श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 38 दिनांक 2 जून 2015 स्पीकर इज ग्रेस कुमदास प्रभु।
पूर्ण हुआ, हो गया। अभी कृष्ण को भूख लगा, हम लोग को भी लगा है, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा। आज जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस, श्री कृष्ण लीलास्तम में सनातन गोस्वामी 108 प्रणाम लिखा है, जो दामोदर महीना में भगवान का रोज 108 दंडवत करना चाहिए। वो एक प्रणाम मंत्र बोलने का, एक दंडवत करने का, फिर दोबारा बोलने का, फिर दोबारा, ऐसे 108 है। तो उसमें जगन्नाथ जी का स्तव सनातन गोस्वामी ने किए हैं। श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरोमुकुट रत्न हे दारू ब्रह्मण घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवनादिचादुरे, ऐसा करे श्लोक है। ते श्लोक के द्वारा बृहद भागवतामृत में श्लोक मिलेगा, और वहाँ पर जगन्नाथ जी को अति वैभवशाली और क्या अवतार रूप में उन्होंने वर्णन किया है। तो आज जो दिवस है, इस दिवस में महाराज इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी का शिवमूर्ति को प्रकट करके अभिषेक किया था, ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य तिथि कहा जाता है। बंगो उपसागर जो भारत महासागर के अंश है, वहाँ पर उनका उपकूल में नित्य अधिष्ठित श्री अर्चा अवतार जगन्नाथ देव का क्षेत्र है, जिसको पूरी बोल के जाना जाता है। और उनका आजू बाजू जो क्षेत्र है, अनादिकाल से उनको एक क्षेत्र धाम बोल के लोग कहते हैं। हावड़ा स्टेशन से 310 किलोमीटर दूर में है ये। अगर शाम को 8:30 बजे उठते हो तो सवेरे लगभग 4:30-5 बजे उतार देता है पुरी में, तो एक दिन में पूरी हो जाएगा आपका। जो बंगाली लोग है, वो लोग क्या करता है, शनिवार को निकलता है सांडे पुरी, सोमवार सवेरे अपना हावड़ा नौकरी में चला जाता है, तो एक दिन में पुरी का भ्रमण हो जाता है उसका। तो सुप्राचीन पौराणिक साहित्य श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, प्राचीन गौड़ीय शास्त्र, इस परम तीर्थ को श्रीक्षेत्र पुरी पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ क्षेत्र नीलाचल, इस प्रकार नाम से अभिनंदन किया है। श्री चैतन्य भागवत में स्वयं श्री कृष्ण शिवजी को कहे हैं, से स्थाने अमार परम गोप्य पुरी, से स्थान शिव आजि कही तुमा स्थाने, से पुरीर मर्म मोर केहनाई जाने। जब सुदर्शन और इनका जो द्वारिकापुरी को जलाने के लिए जो कालाग्नि आया था कृत्या, उसको बाद जब सुदर्शन करके काशी क्षेत्र को भी पूरा जला दिया, तब शिवजी आकर के कहा, अभी हम कहाँ पर रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारा एक जगह है एकाम्र कानन बोल के, उस जगह में तुम रहो, जहाँ पर लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, सिंधु तीर में नीलाचल नाम का जगह है, उसको पुरुषोत्तर भक्त कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड जब प्रलय में डूब जाते हैं, फिर भी उस स्थान का कुछ नहीं होता है, सदा सर्वदा उस स्थान में हम निवास करते हैं। उस जायगा में रोजाना हमारा भोजन होता है, उस जायगा का जो प्रभाव है उस प्रभाव से 10 योजन भूमि मतलब 1 योजन 8 माइल 80 माइल जो नहीं है 80 माइल 120 किलोमीटर एरिया जो अगर सर्किल किया जाए जगन्नाथपुरी के बीच में रख के उसको सर्किल 120 किलोमीटर एरिया जुड़ के जो जाएगा है वहाँ पर जो भी कीड़े मकोड़े जो भी निवास करते हैं देवता लोग उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं, इतना प्रभाव है। उस जगह को भुवन मंगल नाम से कहा जाता है, वहाँ पर सुने से समाधि होता है और जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व विधारी जगन्नाथ ग्रहभद्र सुभद्रा जी की जय। वहाँ पर अगर सुएगा तो समाधि होता है और खाली सुने के लिए इच्छा करेगा तो प्रणाम फल होता है, अगर भ्रमण करता तो प्रदक्षिण होता है और कुछ भी बात कहेगा तो हमारा स्तव होता है। ये जगन्नाथपुरी धाम का इतना महत्व है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सागर एक लेक्चर में लिखा है, लेक्चर दिए थे जो पुरी का लोग अगर मछली छोड़ देगा तो उनको हविषान्न खाने का फल मिलेगा, उन्हें पुरी में लेक्चर दिया था। उस जगह हमारा है और हमारा सबसे प्रियतम है, वहाँ पर जो जो निवास करता है सो मेरा समान है। उस जगह में किसी प्रकार का जमलोक का अधिकार जमराज का अधिकार नहीं है, वहाँ का अच्छा और बुरा विचार मैं ही करता हूँ, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि को किया था। जब पुंडरीक विद्यानिधि विचार किया कि जगन्नाथ भगवान है उन्होंने मंडुआ वस्त्र पहन सकता है, लेकिन सेवक लोग भी भगवान हो गया क्या, वो भी मंडुआ वस्त्र पहनता है, तो ये विचार अपना सखा स्वरूप दामोदर से करके आ रहे थे। रात को जब शयन किया तो जगन्नाथ और बलराम आकर के ऐसा पिटाई किया उनको गाल में जो पूरा अंगुली और उसका जो फिंगर रिंग था उसका भी निशानी आ गया। बोला तुम जाओ यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरा धाम में आकर के मेरा और मेरा सेवक को विचार करते हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं है। तो स्वरूप दामोदर जब सुबीर आया, सुबीर आकर उनको बुलाया, रोज दोनों का जाना था जगन्नाथ दर्शन को, रोज दोनों जाते थे, तो उन्होंने आके सब कुछ कहा। तो स्वरूप दामोदर कहा देखो भगवान का कृपा अपना सेवक पर, लोग सपनों का वाक्य सत्य तो नहीं मानता है लेकिन सपनों का साक्षात फल आज दर्शन हो रहा है। लोग इतना इतना खराब कार्य करता है जैसे स्वप्न मिले लेकिन उनको स्वप्न दृष्ट नहीं होता है, लेकिन आपके ऊपर भगवान का विशेष विशेष कृपा है जिसके द्वारा भगवान सपने में आकर आपको दंड दिया। तो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप शक्ति का नाम है श्रीदेवी, उस क्षेत्र का प्रभाव श्रीदेवी किया प्रभाव से प्रभावान्वित है। श्री शब्द का अर्थ है सर्वलक्ष्मी अंशिनी श्री राधिका। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्रीपाद शब्द का अर्थ मिला है, श्री शब्द का अर्थ दिया लक्ष्मी, पा शब्द का अर्थ दिया पालन करना, तो लक्ष्मी जी को पालन करके जो दान करता वो श्रीपाद है। जो लक्ष्मी जी को पालन करता है वो व्यक्ति जो सबको दान करता है उसका नाम है श्रीपाद। क्या दान करता है, कृष्ण भक्ति, कवि कर्णपुर इसका एक्सप्लेनेशन किया है। मधुर रस का जो उपासक लोग है वो सदा सर्वदा राधा रानी का सेवा माधुर्य में निमज्जित रहते हैं और उसी को श्री क्षेत्र कहा जाता है। श्री राधा माधव का मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य का असमर्थ कृपा से उस क्षेत्र धाम परिप्लावित है। उनका ही द्वितीय स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय इसी जगह में महाभाव रसराज मिलित तनु पुराण पुरुष परिशिष्ट लीला कैवल्य माधुरी विस्तार किए हैं। उनका द्वितीय मूर्ति गदाधर पंडित क्षेत्र में क्षेत्र संन्यास लेकर के गोपीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत रूपी गौरहरि का नित्य आराधना किए हैं। महाप्रभु का संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रसिद्धि हुआ और स्वरूप राम राय, उनका मित्र श्री सनातन, श्री रूप, श्री हरिदास एवं तद अनुगवर श्री रघुनाथ, श्री जीव, श्री कविराज सब लोग क्षेत्र विहारी श्री कृष्ण चैतन्य को अपना अभीष्ट देव रूप में वरण किए हैं। इसलिए नवद्वीप बिहारी गौरों से स्वरूप रूपानु क्षेत्र विहारी गौर सुंदर अधिकर अधिकारी भाव में अपना लीला का वैशिष्ट्य दर्शन कराया। इसमें एक परिशिष्ट आता है, जब ईश्वर प्रिपाद महाप्रभु जब संन्यास लिया और संन्यास लेके नीलाचल में निवास किया, तब ईश्वर प्रिपाद ने कहा कि मैंने जो स्वरूप को दर्शन किया हमारे लिए वही स्वरूप श्रेष्ठ है, हम उनका संन्यास स्वरूप दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। श्री औद्योगिक आचार्य स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर आके कहते हैं जो तप्त कांचन वर्ण एक कौन सा मूर्ति है जो मधुर आम्ल रूप में विराजित है। स्वरूप तो वही है, लेकिन स्वरूप तो होने का बावजूद भी जो विचारजनीय है, उनका जो दूति है कनक सिंह जैसे दर्शन कर रहा है, उससे यद्यपि गौर सुंदर मधुर है लेकिन ये मधुर आम्ल है। मधु का साथ खट्टा मिलाओगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, इसलिए मधुर आम्ल रस कहा गया है जो सन्यासी स्वरूप का। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार लीला पुरुषोत्तम, उसी प्रकार उस धाम का मुकुटमणि श्री पुरुषोत्तम धाम भी ऐसा ही है, क्योंकि श्री क्षेत्र में श्री स्वरूप रूपवान कुंवर, गौड़ीय गण का प्राण सर्वस्त्र श्री मदन मोहन, श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, सुंदराचल रूपी श्री वृंदावन, श्रीकुंड, चटोकाचल रूपी गोवर्धन, वंशीवट, श्री कालिंदी, श्री गोपीनाथ नित्यानंद, श्री गोपीश्वर अद्वैताचार्य, श्री बरसानास्थल, श्री रामाचार्य लीलास्थल, इसका विस्तृत विवरण ये है कि जिस प्रकार वृंदावन में मदन मोहन, गोविंद एवं गोपीनाथ निवास करते हैं, उस प्रकार सुंदराचल में उसको वृंदावन कहा गया है। सुंदराचल कौन सा है? गुंडिचा। श्री कुंड चटक पर्वत को गोवर्धन कहा गया है और जहाँ पर गोपीनाथ निवास करते हैं उसे वंशीवट कहा गया है, टूटा गोपीनाथ। और जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज वैदिक आचार्य है, और बरसाना का ईश्वर, बरसाना ईश्वर कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा है हरिदास ठाकुर जो नीलाचल में निवास करते हैं। इसलिए इस जगह में सब कुछ प्रकटित है, वृंदावन का समस्त लीला इस जगह में प्रकटित है। वैष्णव तंत्र में कहा गया है मधुरा मथुरा द्वारा क्या लीलाचा करोति जो गोकुले नीलाचल स्थित कृष्णस्थ एव चरित प्रभु। श्री कृष्ण गोलोक मथुरा द्वारिका में जैसे लीला किया है, लीलाचल में अवस्थान करके वो सब लीला उन्होंने करते हैं। उत्कल खंड में श्री क्षेत्र का वैशिष्ट संबंध में श्री जैमिनी ऋषि ने कहा है जो उस आश्चर्य क्षेत्र 10 योजन विस्तृत है, उनका स्वर्ण बालुका के द्वारा स्वर्ण रेती, वो जो रेती है स्वर्ण है, सोना बोलता है, परिवेष्टित है। उनका बीच में बृहद नील पर्वत द्वारा सुशोभित है। श्री भगवान ने भी कहा है समुद्र का उत्तर तीर में महानदी है, और उनका साउथ में जो प्रदेश है वो समस्त तीर्थों से भी बड़ा तीर्थों का फल प्रदान करता है। एकाम्रकानन भुवनेश्वर से होकर के दक्षिण समुद्र तक प्रति स्थान प्रति प्रदक्षेप उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। सिंधु तीर में जो नील पर्वत विराजमान है उस स्थान इतना गोपनीय है कि वो ब्रह्मा से ब्रह्मा का भी दुर्लभ है। पंचोक्रोशम इदं क्षेत्रं समुद्रांत व्यवस्थितं द्विक्रोशं तीर्थराजस्य तटभूमौ सुनिर्मिलं सुवर्ण बालुका किरीन नील पर्वत शोभितं सीमा प्रतिजि क्षेत्रस्य शंखकारस्य मूर्धनि शंखाग्रे नीलकंठ सदत्तत्क्रोश सुदुर्लभं परमं पावनं क्षेत्रं साक्षान्नारायणस्य वै शंख उदर भागस्य समुद्र तत् उपसंकृत। शंख का जो फेस है वो फेस में जगन्नाथ जी का मंदिर है और शंख का जो उदर है उस उदर में समुद्र है। इस क्षेत्र का विस्तार पंचक्रोश है और उस पंचक्रोश में तीर्थराज जो दू क्रोश अति पवित्र है। उनका आकार शंख जैसे है। इनका मस्तक पश्चिम पास में है और शंख का जो अग्रभाग है वहाँ शिवजी निवास करते हैं नीलकंठ। तो ये समस्त अति दुर्लभ है। साक्षात नारायण इस जगह निवास करता है और इनका जो उदर है उसमें समुद्र कहा गया है। अचल ब्रह्म व दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ देव सचल ब्रह्म रूपे नीलाचल में सचल ब्रह्म रूप नीलाचल में विभीषण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक अचल ब्रह्म है एक सचल ब्रह्म है। जब ब्रह्मानंदपुरी आया महाप्रभु का पास तो गोविंद ने कहा कि पुरी आया है ब्रह्मानंदपुरी आया है। तो उनको जब दर्शन करने गया तो दर्शन करने समय पुरी ने मृग चर्मांबर पहना हुआ था। तो बोला पुरी किधर है, उसको दर्शन नहीं हो रहे ना, आपका सामने सामने तो खड़ा है। तो ब्रह्मानंदपुरी नहीं पर चर्मांबर, बोले चर्मांबर क्यों पहनेगा, वो तो सन्यासी है। तो पुरी समझ गया जो इसको हमारा चर्मांबर पसंद नहीं आता है। तो तुरंत इशारा में महाप्रभु कोपिया और बहिर्वास मंगाया और वहाँ पर उन्होंने कहा सचल जगन्नाथ देखी निज विद्यमान। बोला आपने सही कहा, सचल जगन्नाथ तो आप ब्रह्म तो है ही है, आपका नाम तो ब्रह्मानंद, आप स्वयं ब्रह्म है, तो आप सचल जो ब्रह्म है और अचल ब्रह्म है। यहाँ पर लीला विस्तार हुआ था। तो श्री कृष्ण स्तंभ में जो जगन्नाथ का स्तंभ का बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु का स्तंभ किया। श्रीमद चैतन्य देवंग तांग वंदे गौरांग सुंदर सची नंदन माही मांग त्राही ज्योति चूड़ा मनोप्रभो आजानु बाहु स्मराश नीलाचल विभूषण जगत प्रवर्तित साथ भगवान नाम कीर्तन अद्वैत आचार्य संस्वागिन सार्वभौमामि नंदक रामानंद कृत प्रीत सर्ववैष्णव बांधव श्रीकृष्ण चरणाम भोजो प्रेमांवित महाम्बुधे नमस्ते दीन दिनं मां कदाचित किं करिष्यसि नमः। इस प्रकार सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में जो स्तव किया उस स्तव में जगन्नाथ जी का वर्णन किए हैं। स्वयं लक्ष्मी जी वहाँ भोग मनाते हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ उसको भोजन करते हैं और भक्त लोग उस देव दुर्लभ अन्न को प्रसाद रूप में प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु का उन प्रसाद का नाम होता है, प्रसाद अन्न का नाम है महाप्रसाद। उनको कोई भी पर्श करे, कितना दूर से भी क्यों ना लेके आए, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का किसी प्रकार विचार ना करके तुरंत भोजन करना चाहिए। उनका महाप्रसाद का बात भी दूर है लेकिन उनका क्षेत्र का जो महात्म है वहाँ में जो गाढ़ा निवास करता है वो भी चतुर्भुज रूप में दृष्ट होता है। ये क्षेत्र का महिमा, गाढ़ा भी अगर वहाँ निवास करता है तो गाढ़ा भी चतुर्भुज होता है। उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, सब गया होगा उधर, तो पुनर्जन्म किसी सब कैंसिल हो गया है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने से सब कुछ लाभ होता है। जगन्नाथ जी का मुंह में विशाल नयन दृष्टि होता है। ललाट फलक में एक मणिमय तिलक है। अंगकांति नवीन नीरज वर्ण है। मुखमंडल में जो मुंह है वो अष्टमी का चंद्र है। देखो अष्टमी का चंद्र जिस प्रकार है मुंह में ऐसे चंद्रमा है। और जो भी नीलाचल में आते हैं वो सबको लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद सेवन करते रहते हैं। महानंदे सर्वलोको जय जय बोले आईला सचल जगन्नाथ नीलाचले। आपने इसी जगन्नाथ नासी रूप धरी निजे संकीर्तन क्रिया करे अवतरी। तो इस प्रकार उस जगन्नाथ क्षेत्र को कोई कोई व्यक्ति दशावतार क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसी जायगा में सृष्टि स्थिति और प्रलय का संचालन होता है। और भगवान इसी जायगा में विभिन्न अवतार प्रकट करके दूसरा जायगा में गमनागमन करते रहते हैं, और फिर उस जगह का कार्य करके इसी जायगा में दोबारा लौट के आते हैं। मत्स्य आदि दस अवतार दर्शन करने से जो फल लाभ होता है, नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से वो फल मिलता है। उस पर्वत का ऊपर में जगन्नाथ जी का मंदिर निर्माण होने के नाते उसको नीलगिरिवासी व नीलाचल व नीलाद्री कहा जाता है। तो वहाँ ब्रह्मा का जन्म 100 साल है। 50 साल को पूर्व परार्ध और बाकी 50 को उत्तर परार्ध कहा जाता है। तो ब्रह्मा का 50 साल जगन्नाथ जी निर्माध रूप में पूजित हो रहे थे। जैसे 50 पूरा हुआ वैसा ही जगन्नाथ जी का प्राकट्य का समय आ गया। तो एक दिन राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न में भगवान का स्वरूप दर्शन करने के बाद अपना मंत्री विद्यापति को भेजा कि जाके जो भगवान का जो दर्शन किया इस मूर्ति कहाँ मिलेगा इसका खोज करो। तो उन्होंने खोज करते करते जब नीलमाधव जायगा में पहुँचे, जिसको कांटा आड़ी ऐसा कुछ नाम है उसका, महानदी का तीर में है, हम लोग गया था उस जायगा में। उसमें बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में जब उन्होंने पहुँचा तो वहाँ सबर का एरिया था और सबर लोग निवास करते थे। वहाँ जब उन्होंने गया तो जो अपना सबर राज जो विषाबसु का एक लड़की था जिसका नाम था दिया हुआ सबर ही लिखा गया है, तो उससे जो मिला तो उन्होंने अपना घर में अतिथि रूप में उनको लेके गया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सम्मान हर जगह में उस समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसमें जो वर्ण व्यवस्था था उस वर्ण व्यवस्था बहुत हाई फाई चलता था। तो उनको अपना घर में ला करके जब उनको भोजन करते उन्होंने बोला आप अतिथि का सत्कार करो मैं आ रहा हूँ, ये कह करके उन्होंने अपना चला गया। तो आज एक दिन जब वो जा रहे जाते उन्होंने जो पूजा करके जब सवेरे सवेरे लौट के आए तो उनका शरीर का जो खुशबू है विषाबसु का वो कुछ अति आश्चर्य खुशबू उस विद्यावती को मालूम पड़ा। तब उन्होंने कहा अभी ये तो हमको इसका संपर्क तो मिला कम से कम, तो कालावसर में इसका विद्यापति के साथ उस सबरी का विवाह हो गया सबर कन्या का। अभी जमा ही हो गया, तो उन्होंने कहा जे आप जो रोज जो पूजा करने जाते हो उनका पूजा करना, हमको भी उनको दर्शन करा, अपना पत्नी को कहा। तो पत्नी को कहने के बाद कहा, जब उन्होंने बोला, बोला नहीं मैं आपको, ललिता उनका नाम है, उसका पत्नी का सबर विशा बसु का लड़की का नाम है ललिता। जब उनको पूछा जा आपका पिताजी रोज कहाँ जाता है और क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा हमारा पिताजी रोज निर्माधव को पूजा करने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ से पूजा करके लौट के आते हैं। तो जब निर्माधव का संवाद उन्होंने मिला तो विद्यापति बहुत खुश हो गया, और उनका पिताजी ने कहा था कि कभी भी तुम ये निर्माधव का खबर किसी को देना नहीं, लेकिन जब उनका आज्ञा के बिना ही पत्नी ने अपना पति को निर्माधव का खबर दे दिया, तब विद्यापति का निर्माधव का दर्शन करने के लिए बहुत उत्कंठित हुआ। तो एक दिन बहुत अनुनय विनय करने के बाद विशा बसु उनको निर्माधव का दर्शन कराने के लिए तैयार हो गया। बोले एक काम करना पड़ेगा, आपको पूरा आँख बांध देना पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। और तो उन्होंने क्या किया, उनका लड़की ने विशा बसु का कपड़ा जी जो कपड़ा के गांठ में कुछ राई बांध के दे दिया। बोले आप जब जाओगे तो राई को इधर उधर डाल डालते चला जाना। विद्यापति जब जा रहे थे तो रास्ता में उस राय को निक्षेप करके जा रहे थे, और जब वहाँ पर पहुँच गया तो विद्यापति क्या आँख जो बांधा हुआ था आँख को खोल दिया, और विद्यापति श्री निर्माधव का अपूर्व सिमूर्ति दर्शन करके आनंद नित्य स्तब करने लगा। सबर ने विद्यापति को निर्माधव के पास रख करके और फल मूल जो जंगल में मिलता है वो लाने के लिए चला गया। इसी अवसर में वहाँ पर एक कुंड था और उस कुंड में किसी कारणवश एक कावा डाल में सो रहा था, वो नीचे गिर गया। और जैसे गिरा वैसा ही नीचे जैसे गिरा वैसा ही कूप से ऊपर चतुर्भुज रूप में बाहर आया और बोईकुंड में चला गया। तो ये देख करके विद्यापति ने सोचा तो मैं भी एक कुंड में डूबकी लगाऊंगा और मैं भी बोईकुंड चला जाऊँगा। तो उन्होंने जैसे छलांग लगाने कोशिश किया तब बोला हे ब्राह्मण आप निर्माधव का दर्शन प्राप्त किए हो, अभी ये जाके सबसे पहले आपको इंद्रदुम्न को बताना पड़ेगा, तो उसका बाद ही आप आत्महत्या कर सकते उससे पहले नहीं। तब सबर ने जो विशा बसु फूल फल इत्यादि ला करके निर्माधव का पूजा किया, और पूजा करने के बाद निर्माधव ने सबर को कहा कि मैंने आज तक आपका दिया हुआ फल मूल स्वीकार किया है, अभी आपको छोड़ करके मैं नीलाचल धाम में जा करके महाराज इंद्रद्युम्न से प्रदत्त राज सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान निर्माधव ने सबर को कहा। जब निर्माधव को निर्माधव को पूजा से वंचित हो जाएंगे, इस प्रकार सबर को जब अनुभव हुआ तो उन्होंने क्या किया विद्यापति को बांध दिया। बोला विद्यापति जाएगा तब ना इंद्रद्युम्न आएगा, इसको जाने ही नहीं देगा तो जाएगा कि आएगा कैसे। तो बार बार प्रार्थना करने के बाद अपना लड़की से प्रार्थना, लड़की ने बार बार प्रार्थना किया, तब उन्होंने ब्राह्मण को मुक्ति दिया। तो ब्राह्मण इंद्रद्युम्न के पास आकर के निर्माधव का खबर सब कुछ बताया, और राजा ने बहुत सारे लोग लेकर के निर्माधव का आने के लिए सवर राज में चढ़ाई कर दिया। विद्यापति जो राय को जमीन में डाल के गया था वो एक बारिश हो गया तो पूरा राय उग गया, और उसी रास्ता में जब जाके ऊपर पहुंचा तब देखा निर्माधव विग्रह वहाँ पर नहीं है। तो तब राजा ने क्या किया, उस सवर पल्ली को पूरा सैन्य सामंत के द्वारा बंदी बना लिया। तब उस समय आकाशवाणी हुआ, जो आकाशवाणी ने कहा अभी सवर को आप छोड़ दो, आप जा करके नीलाद्री में एक मंदिर निर्माण करो और वहाँ पर दारू ब्रह्म रूप में आपको दर्शन प्राप्त होंगे, इस निर्माधव स्वरूप का दर्शन आप नहीं कर सकते हो। तो इंद्रद्युम्न ने पस्तर के द्वारा एक मंदिर निर्माण किया, और उस मंदिर का निर्माण के लिए जो पत्थर आया था उसका नाम था बौलमाला बोल के एक पर्वत था, उस बौलमाला से पत्थर ला करके एक मंदिर का निर्माण किया। और रामकृष्णपुर नाम का एक गाँव भी वहाँ पर स्थापन किया। उस मंदिर मिट्टी से नीचे साठ हाथ मतलब 90 फीट मिट्टी का नीचे है और मिट्टी का ऊपर 180 फुट है। मिट्टी का नीचे 80 फुट और ऊपर 180 फुट मिट्टी का ऊपर। मंदिर का ऊपर एक कलश एक चक्र स्थापन किया गया और मंदिर को पूरा सोना से मोड़ दिया गया। इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा के द्वारा मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मलोक गया और ब्रह्मलोक में जब गया तो वहाँ कुछ समय उनको रुकना पड़ा। इसी समय में इंद्रदुम्न जो मंदिर बनाया था वो पूरा मंदिर बालू में ढांक दिया। तो कितना फुट बालू हो गया? 180 फुट बालू हो गया, रेती पूरा मंदिर ढांक दिया। इतवसर में सूर्यदेव गालमाधव वहाँ पर कोई राजा राजत्व किया। गालमाधव बालू का रेती का अंदर से उस मंदिर का उद्धार किया। इस समय इंद्रदुम्न ब्रह्मा से बातचीत करके जो लौट के आया तब मंदिर बोला ये मंदिर मैं बनाया। तो गालमाधव ने बोला ये मंदिर मैं बनाया, आपने नहीं बनाया। तो इस प्रकार दोनों में झगड़ा हुआ। तो मंदिर का निकट में एक कल्पवृक्ष है, वहाँ पर भूषुंडी काक निवास करते थे। तो दोनों उनका पास आया और वहाँ आकर के कहा कि ये जो मंदिर है इस मंदिर ने महाराज इंद्रदुम्न निर्माण किया है, इसमें आपका निर्माण नहीं है। ये मंदिर रेती में ढाक गया था और राजा गालमाधव इसको निकाला रेती से। जब गालमाधव सत्य मिथ्या कथा कहा तब इंद्रदुम्न सरोवर का पश्चिम तीर में गालमाधव को अवस्थान करना पड़ा। इंद्रदुम्न श्री ब्रह्मा को जब परम मुक्तिदायक श्रीक्षेत्र और श्री मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए प्रार्थना किया तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवान अपना स्वरूप शक्ति के द्वारा सदा सर्वदा इस जगह में निवास करते हैं और यहाँ भगवान को प्रतिष्ठा करने का क्षमता हमारे में नहीं है। जिस प्रकार सालग्राम को प्रतिष्ठा नहीं होता है तो उनका प्रतिष्ठा करने का क्षमता किसी में नहीं हो ऑटोमेटिक प्रतिष्ठित है। गोवर्धन शिला इसका प्रतिष्ठा नहीं होता है और किसका नहीं होता है? ओंकार श्री जाग वहाँ पर जो शिवलिंग मिल जाए उनका प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो तीन चीज़ का प्रतिष्ठा नहीं की जाए। अपने आप में प्रतिष्ठित है, ओंकार से शिवलिंग को लेकर आप पूजा कर सकते हो, कोई प्रतिष्ठा करने का जरूरी नहीं है। और गिरिराज शिला और सालग्राम शिला ये तीन वस्तु का प्रतिष्ठा नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठित है। इनको अगर पूजा करना है तो जिस दिन शुरुआत करोगे उस दिन ज़्यादा पानी डाल के गंगा जल जो भी है उसका परिमाप है उतना डाल के उनका अभिषेक करो, महाअभिषेक करके पूजा करना शुरू कर दो, हो गया आपका प्रति अपना पूजा का शुरुआत। तो बोला हम तो इसका प्रतिष्ठा कर नहीं सकता है तो मैंने इसमें एक ध्वजा बना देता हूँ और इस ध्वज को जितना दूर जहाँ जितना दूर से ध्वजा को दर्शन किया जाएगा वहाँ से भी अगर प्रणाम करे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये ब्रह्मा का आशीर्वाद। अरे ध्वजा को अगर आपको देखना है तो रात को 8-9 बजे के बाद जाओ मंदिर में। अगर रात अच्छा हो, सुनिर्मल आकाश हो, अगर आपका जो अष्टमी के बाद पूर्णिमा तक जो होता है इस स्थिति में आकाश में मेघ ना हो तो आप वहाँ पर जो चबूतरा है वहाँ सो जाओ, वहाँ सोने के लिए मिलता है, आराम से हो जाओ और ऐसा करके ध्वजा का देखते रहो तो इतना सुंदर लगता है ध्वजा का, इतना सुंदर लगता है, वो ऐसे ऐसे उड़ती रहता है और बहुत मज़ा तो लगता है ध्वजा कि ध्वजा देखने बहुत अच्छा है। तो जो भी व्यक्ति जितना दूर से ध्वजा का दर्शन होगा वहीं से अगर प्रणाम करेगा तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो जब नीलमाधव का दर्शन नहीं मिला तो राजा ने कहा मैं अनशन व्रत करके अपना प्राण को ताक दूंगा। तो कुश का सज्जा किया, कुश तो राज जगन्नाथ जी स्वप्न में आके कहा, आपको सोचने का कोई जरूरी नहीं है, समुद्र में जो बांकी मुहान एक जगह है जिसको अभी नाम है चक्रतीर्थ, उस जगह में मैं दारू ब्रह्म रूम में तैरते तैरते आऊंगा, आप वहां पर हमारे लिए अपेक्षा करो। तो रजानंद दुबन वहां गया, वहां जाकर के खड़ा रहा, अपेक्षा किया। तो कुछ समय के बाद एक लोकड़ी तैर तैर के वहां पर आई, तो बहुत सारे लोग आलू लोकड़ी में शंख चक्र गदा पद्म सब निशान लगा हुआ था। तो बहुत कोशिश, बड़ा बड़ा लोग लगाकर हाथी इत्यादि लगा करके उस दारू ब्रह्म को उठाने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने भी उस लकड़ी को उठा नहीं पाया। तब जगन्नाथ जी राजा को कहा कि हमारे जो पहले का सबक विषावसु है, जो नीलमाधव का पूजा करते थे, उनको बुला के लाओ और एक सोना का रथ उस दारू ब्रह्म का सामने खड़ा करो। तो उसी आदेश अनुसार जब राजा ने कार्य किया तो सब आकर के उस लोकड़ी का एक बाजू विषावसु पकड़ा, दूसरे बाजू विद्यापति, दोनों पकड़ करके सोना का जो रथ था उसमें चढ़ाया और सब लोग हरि कीर्तन करने लगा। दारू ब्रह्म रथ में आए और आने के बाद राजा उनको एक निर्दिष्ट जगह में स्थापना किया। श्री ब्रह्मा वहाँ पर यज्ञ आरंभ किया, श्री नृसिंहदेव को यज्ञ विधि में स्थापन किया गया। कहा जाता है जिस स्थान में वर्तमान मंदिर है उसी स्थान में यज्ञ अनुष्ठान हुआ था। मुक्ति मंडप का पश्चिम दिख में नृसिंह मंदिर विराजित तो है, उन्हीं आदि नृसिंहदेव है। जब इंद्रदेव ने बहुत सब कारपेंटर को बुलाया उस मूर्ति बनाने के लिए, ने किसी ने मूर्ति बना नहीं पाया, तब विश्वकर्मा जी एक कारपेंटर का रूम में आया और आकर के राजा के कहा ये मैं इनका मूर्ति बनाऊंगा। उनका नाम था अनंत महाराणा, इस निवास नाम लेके आए थे, और मैं 21 दिन का अंदर इस मूर्ति को निर्माण करूंगा, लेकिन मंदिर का द्वार बंद रहेगा। अभी भी जो अभी मूर्ति बनना शुरू होगा काल से, अभी इस साल नया कलेवर है, लकड़ी आ चुका है, अभी पूजा चल रहा है उधर, काल से मूर्ति बनाना कार्य शुरू होगा। और वो मूर्ति जब बनेगा कोई अंदर जा नहीं सकता है, पूरा बाउंड्री रहेगा, खाली जो पुजारी लोग है बा जो मूर्ति बना गया वही लोग अंदर रह के भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति का निर्माण करेगा। कोई के कहते हैं जब मूर्ति का निर्माण हो जाता है और दोनों विग्रह का आमने सामने रखा जाता है, और आमने सामने रखने के बाद इनका नाभि उनमें शिफ्ट करता है। कोई कहता है जो क्या बोलते जीवंत शालग्राम बोलता है, कोई जीवंत शालग्राम रहता है उनको इधर से उधर डाला जाता है। तो उस समय बोलता है, कोई बोलता है भूमिकंप होता है, कोई बोलता है साइक्लोन बोलता है, कोई बोलता है तूफान आता है, अभी क्या है क्या नहीं है इस साल अगर जाओगे तो देख के आ सकते हो, इस साल सुजोग है। अभी इसका बाद 10 साल 15 साल 20 साल 24 साल क्या मालूम जिंदा रहे कि ना रहे, भगवान जाने। जो मूर्ति का जो ट्रांसपरेबल है देखने के लिए वहाँ इस साल जाना बहुत अच्छा रहेगा, बोलना मुश्किल है कब मर जाएगा, ठीक है ना, नहीं जो 12 साल से बोले तो होने वाला है ही नहीं, 12 साल बहुत लंबा है। इस प्रकार उनको कहा जे 21 दिन तक आप इसको खोल नहीं सकते हो, अगर खुलोगे तो गलत हो जाएगा। तो दो सप्ताह हो गया, दो सप्ताह के बाद जब वो ठुक ठाक आवाज़ चल रहा था, लेकिन ठुक ठाक आवाज़ दो सप्ताह के बाद और नहीं हुआ, तब राजा के बहुत उत्कंठा हुआ जब अभी क्या वो खाया नहीं, शायद मर गया होगा किसी प्रकार से। जो मंत्री बार बार मना कर रहा महाराज आप मत खोलो मत खोलो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, तब उन्होंने जबरदस्ती गेट को खोल दिया। तो देखा कारीगर है ही नहीं है और दारू ब्रह्म तीन मूर्ति रूम में विराजित तो है, उनका हाथ और हाथ का अंगुली और पाद पद्म प्रकाशित तो नहीं हुआ है। तेही स्वयं जगन्नाथ है, राजा अपना प्रतिज्ञा भंग करके एक हफ्ता पहले भगवान का दार उन्मोचन किया, इसलिए अपराधी समझ करके अपना प्राण को त्यागने के लिए कृत संकल्प हुआ। तब भगवान ने कहा जे हमारा इसी स्वरूप में हमको प्रकटित होना था, आपके इसमें कोई दोष नहीं है। जब भक्त हम आपको भक्तिभाव से दर्शन करते हैं तो हमारा स्वरूप में उनको कृष्ण दर्शन होता है, और अगर तुम हमारा इस प्रकार सेवा करना चाहते हो तो हमारा सोना का व रूपा का हाथ और पावर बना सकते हो, अरे बना करके उसको लगा सकते हो। और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा हे प्रभु, जो वृद्ध कारीगर आपका शिवमूर्ति का निर्माण किया उनका वंशधर को हर साल आपका रथयात्रा के लिए रथ निर्माण करे, दूसरा कोई नहीं। तो जगन्नाथ जी बोला ठीक है वही होगा। और कहा जो विषावसु निर्माता रूप में सेवा करते थे उनका वंशधर जितना होगा वो दैत्या नाम से आपका सेवक में परिचित हो, रथास्तु। और जो विद्यापति का जो ब्राह्मण पत्नी का गर्भ से जो वंशलोक उत्पन्न हुआ था उस वंश परंपरा में जगन्नाथ जी का पुजारी बनेगा, दूसरा कोई नहीं। और विद्यापति को दो पत्नी थे, एक ब्राह्मण पत्नी एक सवर पत्नी। तो ब्राह्मण पत्नी का जो लड़का लोग जो वंशधर लोग है वो पुजारी बनेगा, और जो सवरी पत्नी से जो लड़का वंशधर लोग है वो सब कुकिंग करेगा सुपकार नाम में। और इंद्रदुम्न भी अपना जगन्नाथ जी कहा मुझे और एक वर देना पड़ेगा आपको, जो आपका मंदिर पूरा दिन में 3 घंटे ही बंद रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी हर समय मंदिर खुला रहेगा और जगतवासी आपको दर्शन करें, और दिन भर आपका भोजन चलते रहेगा, आपको हाथ को भी सूखना नहीं चाहिए। श्री जगन्नाथ जी बोला तथास्तु। और कहा उन्होंने ये जो मंदिर हम निर्माण किया ये कभी ना बोल सके मंदिर मेरा है, इसलिए हमको अभिशाप दिया करो जो हमारा वंश में कोई ना रहे, सब मर जाए। जब क्या नाम क्या है शिवानंद सेन, शिवानंद सेन सब गोरिया को लेके जाता था, समस्त गोरिया को ले जाता था महाप्रभु के दर नीलाचल में महाप्रभु के पास। एक दिन रास्ता में जाते जाते किसी चक्कर में वो जो टैक्स होता है इनकम टैक्स वाला रोड टैक्स चेकना का वो उनको पकड़ के रख लिया, और सब उधर जाने के बाद उन किसी को खाना नहीं मिला और रहने का जगह नहीं मिला। तो नित्यानंद प्रभु क्रोधित तो होकर के बोला शिवानंद को जितना वंश है सब मर जाए, ऐसा अभिशाप देने लगा। तो शिवानंद का पत्नी रोने लगा, बोला गोसाई ने साफ दिया हमारा सब लड़का लोग मर जाएगा। बोला कुछ चिंता मत करो, गोसाई का साफ का कोई काम होने वाला नहीं है, टेंशन मत लेकर कोई मरने वाला नहीं है, गोसाई साफ ने आशीर्वाद दिया, ये भगवान का लीलावली है। तो जो भी हो इन्होंने कहा जो हमारा वंश में किसी ने ये कह ना सके जे ये मंदिर हमारा है। कुछ दिन पहले कुछ साल पहले कोई हो गया कम से 20-25 साल पहले इस्कॉन मंदिर के ऊपर केस हुआ था, पूर्वाद का जो पुत्र लोग था वो लोग कोर्ट में केस किया, केस करने के बाद ये रिकॉर्ड मत कर इसको अच्छा नहीं है।